change. Do something about it. Fed up with this. Why don't you change it? Only for your looking at the limits.
Jai Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Gopijanavallabha Giriharanare Gopijanavallabha Giriharanare Yashoda Nandana Braj Janaranjana Yashoda Nandana Braj Janaranjana Jamuna Tira Yamuna Tira Vanachare Jaya Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Gopijana Vallabha Girivarare Yashoda Nandana Braj Janaranjana Yashoda Nandana Braj Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunj Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jaya Prabhu Pada Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada
Jaya Om Vishnupad Paramahansa Parivraj Kacharya Shtotarashat
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭೈಚರಣ ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಾಂಗ ಕಿ ಜಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ್ವ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಭಾಗವತ್ ಸಾರ ಕಿ ಶೃಂಖಲಾ ಮೇ ಪಾಂಚವೇ ಸ್ಕಂದ ಕೆ 18ವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಆಗೆ ಜಾರಿ ರಹೇಗಿ ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಕುಛ್ ಶ್ಲೋಕೋ ಕೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಪಢೇಂಗೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೌ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಾಂ ಸಹಗನ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ. ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾಂ ಸಹಗನಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತೀತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೇನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿ ಪೀಯೂಷ ಸರ್ವವೇದೈಕಸತ್ಫಲ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತರತ್ನಾಢ್ಯ ಸರ್ವಲೋಕೈಕದೃಕ್ಪ್ರದ ಸರ್ವಭಾಗವತ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರಭೋ कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तु ते मदेकबन्धो मत्सङ्गे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमस्तु ते असाधु साधु तदायिन अतिनीचोच तः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। कल इस अध्याय में चर्चा कर रहे थे प्रार्थनाओं की, जो अलग अलग वर्षों के निवासी जम्बूद्वीप में रहने वाले, अलग अलग वर्ष में रहने वाले भद्र वर्ष, केतुमाल वर्ष इत्यादि, इन वर्षों में रहने वाले निवासी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं भगवान के अलग अलग अवतार को। भगवान के कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे भद्रवर्ष के निवासी भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, और उसके बाद प्रह्लाद महाराज इत्यादि ये अब प्रार्थनाएं नरसिंह देव को करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी देवी और उनके सभी संगी कामदेव, भगवान के एक अवतार हैं कामदेव, देवता नहीं ये स्वयं भगवान, उनको प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे, और फिर आगे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, इन सबको प्रार्थनाएं अर्पण होंगी। तो आज चर्चा करेंगे प्रह्लाद महाराज जो प्रार्थनाएं नरसिंह देव को अर्पण करते हैं, उन प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। प्रह्लाद महाराज एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना जिसका अनुवाद हम पढ़ना चाहेंगे, वो कहते हैं कि हे भगवन, हमारी प्रार्थना है कि हम पारिवारिक जीवन के बंधन में, जिसमें घर, स्त्री, संतान, मित्र, धन तथा संबंधी जन इत्यादि सम्मिलित हैं, इसके प्रति कभी भी आकृष्ट ना हो। यदि हम में किसी से किंचित आसक्ति हो भी, तो वह भक्तों से हो जिनके लिए श्री कृष्ण ही परम प्रिय हैं। प्रह्लाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आसक्ति घर में, परिवार में, पुत्र दारा, गृहादिशु, हमारी आसक्ति इन सब में ना हो। लेकिन अगर आसक्ति होनी ही है तो फिर हमारी आसक्ति भगवान के भक्तों में हो। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहता है। वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, किंतु जो भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए ऐसा कर पाना कठिन है। प्रह्लाद महाराज समझा रहे हैं कि कौन व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है। तो वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है, अर्थात जिसने अपना मन वश में कर लिया है, मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। भगवद गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि आप कह रहे हैं कि मन को वश में करें, लेकिन हम ये बहती हुई हवा को वश में कर सकते हैं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकते। चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्। बहुत ये जो मन है बहुत बलवान है, बहुत धीठ है, इसको मन को वश में करना कठिन है। और भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने कहा असंशय महाबाहो, कोई इसमें संशय नहीं है हे महाबाहो। भगवान अर्जुन के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग श्लोकों में करते हैं, इसलिए नहीं कि जो भी नाम भगवान को याद आया भगवान ने कह दिया। हर श्लोक में जो नाम भगवान ने लिया है उसका महत्व है, और इसीलिए यहां वो कहते हैं असंशय महाबाहो, हे महाबाहु तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी भुजाओं में बड़ी शक्ति है, लेकिन ये शक्ति मन को वश में करने के लिए कोई काम नहीं आती है। इसीलिए कहते असंशय महाबाहु। या फिर कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि अरे तुम महाबाहु हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम दोनों हाथों से तीर चला सकते हो, इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारे तीर इतने तेज आते हैं कि दुश्मन के जो कवच है उसको भेद कर उसकी छाती में चले जाते हैं, इतनी तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन क्या तुम मन को वश में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान कहते हैं बहुत कठिन है मन को वश में करना, तो फिर क्या करना चाहिए? अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्ये न च गुह्यते। अर्जुन मन को वश में करने के लिए हाथों की शक्ति नहीं चाहिए महाबाहो, शरीर की शक्ति नहीं चाहिए, तो मन को वश में करने के लिए क्या चाहिए? अभ्यास और वैराग्य। कुछ चीजों का अभ्यास करो अर्जुन, मन को दृढ़ करो, और कुछ चीजों को त्यागो, वैराग्य उत्पन्न करो। तो क्या चीजें हैं जो हमें स्वीकार करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो त्यागनी चाहिए? भगवान किस वैराग्य की बात कर रहे हैं और किस अभ्यास की? साधारणतः लोग योगा अभ्यास करते हैं, आसनों को करते हैं अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, लेकिन उस अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। और भगवान अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यते, उस वैराग्य की भी बात नहीं कर रहे हैं जो सारे घर को त्याग कर, संसार को त्याग कर, दुनिया को त्याग कर हिमालय में चले जाएं। अगर ऐसा होता तो भगवान अर्जुन को मना नहीं करते युद्ध करने ना करने के लिए। अर्जुन तो यही चाहता था, भैक्षम अपीह लोके, मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान उसे कह रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो जब युद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो वैराग्य की बात नहीं करेंगे, तो फिर किस वैराग्य की बात कर रहे हैं? भगवान उस वैराग्य की बात कर रहे हैं, उस अभ्यास की बात कर रहे हैं जो हमें कृष्ण के निकट ले जाए। हर ऐसी क्रिया को करना जो हमें कृष्ण के निकट ले जाए, हर ऐसी क्रिया को त्याग देना, उससे वैराग्य ले लेना जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए, यही सारे शास्त्रों का सार है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। बस जो अनुकूल है उनको स्वीकार करें, जो प्रतिकूल है वो त्याग दें, यही दो नियम हमें चाहिए जीवन। तो ये अभ्यास, तो ऐसी सारी क्रियाएं करें जो हमें कृष्ण भक्ति में आगे ले जाएं। भगवान के मंदिर आना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के विग्रह को श्रृंगार करना, भगवान को भोग अर्पण करना, भगवान के मंदिरों को चलाना, भगवान के दिए गए ज्ञान का प्रचार करना, ये अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? जितने भी भौतिक भोग हैं जो हमें आसक्त करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, घर, स्त्री, संतान, मित्र, इन सब में आसक्ति बढ़ती है, कृष्ण से आसक्ति चली जाती है, तो क्या इन सब को छोड़ देना चाहिए? कोई घर नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई संतान नहीं, कोई मित्र नहीं। अगर कोई छोड़ सके कृष्ण को अपना मित्र, कृष्ण को अपनी संतान, कृष्ण को अपना पति, कृष्ण को सब कुछ बना सके, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं, तो तो कम से कम उन सारी चीजों को कृष्ण भक्ति में इस्तेमाल करना। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, रूप गोस्वामी कहते हैं जो कुछ है उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो, छोड़ने की जरूरत नहीं है, त्यागने की जरूरत नहीं है, ये सर्वोच्च त्याग है। तो इसीलिए ये प्रहलाद महाराज यहां समझा रहे हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, तो मन को वश में कर लिया और उसके आगे क्या है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं, हरे कृष्ण, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को, वैसे जीवन की एक आवश्यकता इस माइक को ठीक करना भी है, ये न्यूनतम आवश्यकता है, कम से कम माइक तो ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप लोग भागवत नहीं सुन पाएंगे। हम लोग ऋषि मुनियों की तरह नहीं हैं जो बिना माइक के हजारों लाखों ऋषि मुनियों ने ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी की वाणी सुन ली। हम लोग अभी थोड़े नीचे स्तर पर हैं, इसलिए इस माइक को थोड़ा ठीक रहना चाहिए। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को, अर्थात जो बहुत कम चाहिए जीवन में उसको स्वीकार करना है, खाने के लिए जितना चाहिए बस उतना स्वीकार करना, पहनने के लिए जितना चाहिए उतना स्वीकार करना, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए बाकी सारा समय बाकी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाना, ये दूसरा लक्षण प्रहलाद महाराज यहां दे रहे हैं उस व्यक्ति के जो कृष्ण भावनामृत में बड़ी तीव्रता से अग्रसर होता है। तो कहते हैं कि जिसने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में बस जितना है उसमें संतुष्ट रहता है, सोचता नहीं कि मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए, आज मेरे पास इतना है कल इतना होगा, कोई आवश्यकता नहीं, जितना है भगवान ने दिया है संतुष्ट, क्योंकि वैसे भी उतना ही मिलने वाला है जितना आपके भाग्य में है, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। हम लोग देखते हैं समाज में लोग बड़ा प्रयास कर लेते हैं, सर पटकते हैं, कहां कहां क्या क्या नहीं करते, मिलता उतना ही है जितना मिलना है भाग्य में। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक रस्सी से बांध दिया जाए, या कभी कभी हम लोग देखते कुत्ते को रस्सी से बांध दिया जाता है और कुत्ता किसी को देखकर बड़ा भौंकता है, भौंकना पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसका क्षेत्र कितना है, जितना वो रस्सी से बंधा है, बस उसमें ही जितनी उछल कूद करनी है कर सकता, बाहर नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति जानता है वो बाहर खड़ा होकर उसको चुरा और चिढ़ाता है, क्योंकि मालूम है आ नहीं सकता। तो हम लोग भी कर्म की रस्सी से बंधे हुए हैं उस कुत्ते के समान, हमारा भी क्षेत्र है, जितनी उछल कूद करनी है उसी क्षेत्र में कर सकते हैं, उतना ही मिलने वाला है, कुत्ते की सीमा है, एक पांव भी उसके आगे नहीं बढ़ा सकता, हमारी भी उतनी सीमा है, कुछ भी कर लें सर पटक लें उतना ही है। इसीलिए न्यूनतम जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहें, सारा समय भगवान की सेवा में लगाएं, बेकार का समय व्यर्थ नहीं करें उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो आपके भाग्य में है ही नहीं, जीवन भर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे मिलने वाली है नहीं, और जीवन के अंत में भी असंतुष्ट होकर मरेंगे कि हाय मुझे 2 साल और मिल जाते, बस मिलने ही वाला था, मेरा लॉटरी लगने वाली थी, जीवन भर लॉटरी का टिकट खरीदा मिली नहीं, लेकिन बस अब जो खरीदी थी वो मिलने ही वाली थी कि मैं मर रहा हूं, डॉक्टर 1 साल और दे दो शायद लॉटरी लग जाए तो अमीर होकर मरूं, क्या लाभ है, व्यक्ति गरीबी में मरे या अमीरी में मरे फर्क क्या पड़ता है फर्क उसके पीछे वालों को पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर आदमी भी मरेगा तो वही हाल होना है जो गरीब आदमी का होना। तो इसीलिए न्यूनतम आवश्यकताएं, जितनी जरूरत है उसमें संतुष्ट रहना और सारा समय भगवान की सेवा में लगाना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं कि जीवन भर केवल कष्ट लेकर कमाते रहो और कमाते कमाते मर जाओ और मरते समय बोलो कि हाँ मैंने कुछ कर दिया लोगों के लिए, मेरे पुत्रों के लिए, अरे क्या किया वो पुत्र क्या करेगा उस पैसे का आप नहीं जानते। इसीलिए संतुष्ट जितना मिला उसमें संतुष्ट, हाँ प्रयास करना चाहिए, इसका अर्थ ही नहीं कि व्यक्ति को कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास में जितना आवश्यक है उतना किया, जितना मिला उसमें संतुष्ट। और आगे वो गुण दे रहे हैं। तो आप लोग याद रखिए कितने गुण हो गए उस व्यक्ति के जो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो सकता है। हमें लगा हम लोगों से बात कर रहे हैं, दीवारों से नहीं। कितने गुण बताए? देखिए अभी पता चलता है कि आंखें खुली हैं, मन कहीं और है ना? क्या करें, शुरुआत करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से क्लास प्रारंभ हो। कुछ लोगों की आंखें बंद हैं, कुछ की खुली हैं, लेकिन कोई यहां नहीं है। क्या गुण बताए, कौन बताएंगे? कोई नहीं, बड़े आश्चर्य की बात। मन को काबू में रखना चाहिए, बहुत अच्छा। कम से कम आपका मन तो यहां पर है, मन को काबू में रखना। दूसरा, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करना, बहुत कम, जितने में है उतने में संतुष्ट रहना। थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग सुनेंगे तो कहने में भी आनंद आएगा। अगर सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कह रहे थे और मान लीजिए सारे ऋषि मुनि आंख बंद करके सो रहे होते सामने और परीक्षित महाराज सो रहे होते, तो क्या उत्साह आता है सुखदेव गोस्वामी को? पहले स्कंद के आगे ही नहीं जाते हो, पहला स्कंद भी शायद नहीं बोल पाते कि बस जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय और परीक्षित महाराज आंखें बंद करके बैठ गए। परीक्षित की आंखें बंद क्यों नहीं हुई, क्या कारण था? हाँ? सात दिन में मरने वाले थे, यस। इसलिए उनकी आंखें बंद नहीं हुई कि उनको बड़ी रुचि थी, रुचि तो बाद में आई थी है ना, जब सुनने लगे। तो पहले क्यों नहीं बंद हुई? क्योंकि पता था सात दिन में मरने वाला हूं, अगर अभी आंखें बंद हो गई तो फिर सारा जो होना वो भी जाएगा। और आप सब सोचते हैं कि आप 70 साल में भी नहीं मरेंगे, राइट? इसीलिए आंखें बंद कर लेते हैं कि अभी कोई नहीं, अगले साल सुनेंगे भागवतम, राइट? हमें तो पता है हमें 70 साल अभी और हैं जीवन के, कुछ नहीं होने वाला है ना। आप लोगों को भगवान ने लिख कर दिया है गारंटी पत्र। सब परीक्षित महाराज के भाव में भागवत सुननी चाहिए। आखिरी दिन सुन रहा हूं भागवतम, बस। तो ये दूसरी चीज कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि वह अपनी इंद्रिय तृष्टि के लिए प्रयास नहीं करता, तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में सुखी रहता है और उनमें भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत प्रयास नहीं करता। ये नहीं कि उसमें भी बस कितना मैं आनंद ले लूं, कितना मुझे भोग मिल जाए, कितनी मेरी सुविधा हो जाए, उसमें आनंद, कोई इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं। ये जो इंद्रिय भोग है ये कई जन्मों से हमने लिया है, हर योनि में लिया है, पशु योनि में लिया है, पक्षी योनि में लिया है, हर योनि में ये सुख ले चुके हैं, इंद्रिय सुख। और इसीलिए हमारे मन पर इतना प्रभाव है कि हमें लगता है बिना इंद्रिय सुख के जीवन हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब कोई ब्रह्मचारी बनता है तो सारे लोग आश्चर्यचकित, उसके पीछे उसके परिवार वाले इत्यादि, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो बोलते नहीं मैं इंद्रिय सुख छोड़ना चाहता। अरे पागल हो गए, इंद्रिय सुख भोगो, आनंद करो, जग में पड़े रहो। तो इसे जो इंद्रिय तृप्ति से परे रहता है, उसका प्रयास ही नहीं करता, वो कृष्ण भावनामृत में जल्दी अग्रसर हो सकता है। और उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ हैं, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर शीघ्र ही समझ सकते हैं। मुकुंद के यशस्वी कार्य इतने सक्षम हैं कि इनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आंखें बंद नहीं करनी चाहिए भागवत में। क्यों? क्योंकि इनको सुनकर भगवान की संगति होगी। भगवान सामने आ रहे हैं भागवत के रूप में, हम आंखें बंद कर लेते हैं। निरंतर उत्साह उत्सुकता पूर्वक भगवान के कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कलमश को दूर कर देते हैं। तो प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि रोज हम लोग अगर सुने, नित्य सुनने से कानों के द्वारा भगवान प्रवेश करते हैं, ध्वनि के रूप में हृदय में जाते हैं और हृदय को शुद्ध कर देते हैं। तो हृदय शुद्धिकरण के लिए और कोई आवश्यकता नहीं है अगर हम ध्यान से श्रवण करते रहें। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन के दीर्घ काल के अनंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। तो कह रहे हैं कि हाँ, गंगा इत्यादि से होता है, लेकिन बड़े लंबे समय तक स्नान करने से फिर शुद्धिकरण होता है, लेकिन भक्तों का संग मात्र, दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हार गुण, इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। तो ये सब कहते हुए जब इन्होंने कह दिया, प्रहलाद महाराज ने गुण, वैसे एक एक श्लोक पर बड़ी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, तो जब उन्होंने ये गुण कह दिए कि ये गुण होते हैं, तो अब वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो गुण कैसे आते हैं। तो कृपया श्लोक को दोहराइए। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन इतनी धीरे बोलेंगे तो ना भगवत अकिंचन होंगे ना भक्ति आएगी। थोड़ा जोर से प्रेम से बोलिए। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणः। मनोरथेनासति धावतो बहिः यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा। मनोरथेनासति धावतो बहिः आप में से कोई एक दो लोग बोले। जियो में कोई
Yeah.
यस्य जिसकी अस्ति है भक्ति भक्ति भगवती श्री भगवान के प्रति अकिंचन निष्काम सर्वे समस्त गुणे उत्तम गुणों के द्वारा तत्र वहां उस व्यक्ति में समासते निवास करते हैं सुरा समस्त देवता हरौ भगवान में अभक्तस्य अभक्त का कुतः कहां महत् गुणाः उत्तम गुण मनोरथेन मानसिक चिंतन द्वारा असति नश्वर या भौतिक जगत में धावतः दौड़ता हुआ बही बाहर। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की गई है, श्री कृष्ण समस्त जीवात्माओं के आदि स्रोत हैं। भगवद्गीता में इसकी पुष्टि हुई है जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में ये जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्नांश हैं। बद्ध दशा में होने के कारण वे मन और पांच इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण के भिन्नांश हैं, अतः जब वे मूल कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त कर लेती हैं तो उनमें थोड़ी मात्रा में श्री कृष्ण के महान गुण आ जाते हैं। जब कोई नवदा भक्ति में रत होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को तुरंत समझ जाता है। तब उसमें कृष्ण भावनामृत के आदि गुण जागृत हो उठते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के अध्याय 8 में आदि लीला के अंतर्गत भक्तों के कतिपय गुणों का वर्णन आता है। उदाहरणार्थ श्री पंडित हरिदास को अत्यंत शिष्ट सहनशील शांत विशाल हृदय तथा गंभीर बताया गया है। इसके अतिरिक्त वे मृदुभाषी धैर्यवान विनयशील परोपकारी द्वैत भाव से मुक्त मन वाले तथा कपट रहित थे। मूलतः ये श्री कृष्ण के गुण हैं और जब कोई भक्त बन जाता है तो ये गुण स्वतः उसमें प्रकट हो जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है कि वैष्णव के शरीर में समस्त गुण प्रकट होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता है। उन्होंने वैष्णव के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है, आप लोग ध्यान से सुने। पहला, वह सबों पर दयालु होता है। दूसरा, उसका कोई शत्रु नहीं होता। तीसरा, वह सत्यनिष्ठ होता है। चौथा, वह सब पर समभाव रखता है। पांचवा, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता। छठा, वह उदार होता है। सातवां, वह मृदु होता है। आठवां, वह सदैव स्वच्छ रहता है। नौवां, उसके संपत्ति नहीं होती। दसवां, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। ग्यारहवां, वह शांत होता है। बारहवां, वह श्री कृष्ण का शरणागत होता है। तेरहवां, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती। चौदहवां, वह विनम्र होता है। 15 वह स्थिर चित्त होता है, 16 वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, 17 वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, 18 वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता, 19 वह सबों का आदर करता है, 20 वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, 21 वह अत्यंत गंभीर होता है, 22 वह कृपालु होता है, 23 वह सखा होता है, 24 वह कवित्वपूर्ण होता है, 25 वह पटु होता है और 26 वह मितभाषी होता है। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बताते हैं कि वैष्णव और अवैष्णव में क्या अंतर है। वैष्णवों में ये गुण होने चाहिए, तो 26 गुणों का वर्णन यहाँ पर किया। वैष्णव के लिए गुण होना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद भी यही चाहते थे कि आंदोलन के सारे भक्तों में ऐसे गुण आए, और तब नहीं इस्कॉन बनाने के बहुत पहले 20 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी झांसी में। और जब लीग ऑफ डिवोटीज का उन्होंने पत्र बनाया कि क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने उद्देश्य लिखा, और उद्देश्य में उन्होंने लिखा कि जो भी इसके सदस्य होंगे उनके अंदर ब्राह्मण के गुण लाने का प्रयास करना। अर्थात उस लीग ऑफ डिवोटीज का उद्देश्य ये है कि सत्व गुण तक उठाने का प्रयास करना और ब्राह्मणों के गुणों को लाने का प्रयास करना। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद चाहते थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आपके भक्तों को कैसे पहचाना जा सकता है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, दे विल बी परफेक्ट जेंटलमैन, वो बड़े सभ्य पुरुष होंगे, सभ्य सभ्य अर्थात गुणों से परिपूर्ण होंगे। उनको देखकर ही, उनके आचरण को देखकर, उनसे बातचीत कर व्यक्ति जान जाएगा कि ये भक्ति में आगे हैं। तो इसीलिए हमें इन गुणों को उत्पन्न करना अपने जीवन में अनिवार्य है। आचार्यों ने समझाया, जैसे हमने पढ़ा, कृष्णदास कविराज को स्वामी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, और इतना ही नहीं श्री कृष्ण भी चाहते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण कुछ ऐसे लक्षणों को देते हैं जो भक्त के अंदर होने चाहिए, और वो कहते हैं कि इसके परे जो भी है वो अज्ञान है। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तो ऐसे श्री कृष्ण कई गुणों को देते हैं। तो श्री कृष्ण की इच्छा है, आचार्यों की इच्छा है, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है, और साथ ही साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये अनिवार्य है। जब तक हम गुणों को अपने अंदर नहीं लाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना संभव नहीं हो सकता। तो कैसे लाना चाहिए गुणों को? यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचन, श्रवण कीर्तन के द्वारा, सतत श्रवण कीर्तन हो, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नवधा भक्ति के द्वारा इन गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन बारंबार इन गुणों के बारे में सुनना चाहिए, हर भक्त को ये देखना चाहिए कि ये जो गुण दिए गए हैं, जिनकी चर्चा चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में, रूप गोस्वामी ने भी इसकी चर्चा की है, तो क्या मेरे अंदर ये गुण आ रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं तो मैंने कौन सा प्रयास किया इन गुणों को लाने के लिए, और अगर प्रयास नहीं किया तो प्रयास करना चाहिए, और अगर प्रयास कर रहे हैं और फिर भी ये गुण नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारे प्रयास में कहीं गलती है, फिर हमें कोई वरिष्ठ भक्त से चर्चा करनी चाहिए। तो जब हम भागवत पढ़ें तो इसको व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए भी हमें कुछ सीखना चाहिए। तो व्यवहारिक जीवन में कैसे इन गुणों को ला सकते हैं, और क्या क्या ये गुण हैं, जैसे हमने 26 गुण यहाँ पर पढ़े प्रभुपाद दे रहे हैं, ये सारे गुणों को हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं। एक भक्त को गुणों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती, भक्ति इतनी कर लेता है कि भक्ति के द्वारा वो गुण अपने आप आ जाते हैं। सर्वे गुणा सत्र समासते सुरा, तो फिर हमें गुण लाने के लिए क्यों प्रयास करना चाहिए? क्योंकि हमारा भक्ति का प्रयास बड़ा तीव्र नहीं, अभी वो भक्ति आई नहीं है, तो भक्ति में प्रयास करना चाहिए और ये गुण अपने आप आएंगे। तो कौन से गुण हैं जो आवश्यक हैं? सबसे पहला है वो सब पर दयालु होता है, कृपा करता है। श्रील प्रभुपाद के हृदय में इतनी कृपा थी सभी जीवों के प्रति कि अपनी उम्र के 70 साल में वृंदावन जैसे धाम को छोड़कर वे अमेरिका गए केवल कृपा बरसाने के लिए। जाते समय शिप पर उन्हें 2 हार्ट अटैक आए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पहुंचते ही वापस आ जाता कि नहीं नहीं मैं वृंदावन में मरना चाहता हूं, लेकिन प्रभुपाद वहां गए, प्रचार किया। ये सभी जीवों पर दयालु रहना, उस जीव पर भी जो आपका बुरा करता है। अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि ने कहा कि अरे श्राप देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, कोई गलती नहीं थी अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज ने कई समय से उपवास रखा था, जल भी ग्रहण नहीं किया था, अब उपवास तोड़ने का समय आ गया और उसी समय दुर्वासा मुनि आए कि मैं अभी आ रहा हूँ स्नान करके, मेरे लिए भोजन तैयार करो। तो अब अम्बरीश महाराज का कर्तव्य ये होता है कि अगर घर पर कोई ऐसे महान व्यक्ति आए हैं तो बिना उनको खिलाए वो खा नहीं सकते, ये नियम है। लेकिन अगर वो खाते हैं तो दुर्वासा मुनि का अपमान होगा, नहीं खाते हैं तो जो समय है उपवास तोड़ने का वो चला जाएगा। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों ने कहा जल ग्रहण कर लीजिए। जल ग्रहण करना ये खाना भी है और नहीं भी खाना, आपका उपवास टूट जाएगा लेकिन साथ साथ आपने कुछ खाया नहीं तो दुर्वासा मुनि का मान भी बना रहेगा। तो उन्होंने जल ग्रहण कर लिया, उपवास को तोड़ लिया। दुर्वासा मुनि आए, उनको क्रोध आया कि कैसे उपवास तोड़ दिया, तो उन्होंने फिर प्रयास किया उनको मारने का, लेकिन उनको ही भागना पड़ा, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे लगा। तो जब सुदर्शन भगवान के पास भी चले गए दुर्वासा मुनि कि बचाइए आपके चक्र से, भगवान ने कहा मैं नहीं बचा सकता, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, जाओ अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो। तो जब वो आए और उन्होंने क्षमा मांगी तो उस समय जब सुदर्शन चले गए तो अम्बरीश महाराज से दुर्वासा मुनि कहते हैं प्रार्थना करते हुए कि मैं बड़ा आभारी हूँ आपका कि उस समय भी जब सुदर्शन मेरे पीछे था, जब मैंने आपके प्रति कुछ गलत किया, आप मेरी अच्छे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप मेरे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। देखिए सुदर्शन चक्र क्यों नहीं मार पाया, हम लोग पढ़ते कि दुर्वासा भाग रहे थे, क्या सुदर्शन से कोई भाग सकता? भगवान के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल ने भागने का प्रयास किया, किधर भागा? तो दुर्वासा कैसे भाग लिया, इतनी जगहों पर कैसे भाग लिए, वैकुंठ चले गए, यहां चले गए, वहां वापस आए, तो क्या शक्ति थी? अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे थे। इसको कहते हैं दुर्वासा मुनि बाद में कि आपकी प्रार्थनाओं के कारण मेरी रक्षा हुई। तो अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे थे कि इनको कुछ हो नहीं, इन्होंने ठीक है जो भी किया है, लेकिन तो ये भक्त है सभी जीवों के प्रति कृपा दयालु रहता। दूसरा, उसका कोई शत्रु नहीं होता। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया, तो फिर दुर्योधन कौन था? इतने सारे लोग जो विरोध कर रहे थे वो कौन थे? वो लोग युधिष्ठिर महाराज को भले शत्रु माने, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने किसी को शत्रु नहीं माना। तो प्रभुपाद जब प्रचार के लिए जाते तो बहुत से लोगों ने उनको शत्रु माना, बहुत से लोगों ने उनकी निंदा की, लेकिन प्रभुपाद ने किसी के प्रति शत्रुता नहीं दिखलाई। कई लोगों ने निंदा की कि आप सन्यासी होकर आपने समुद्र पार कर लिया, आप म्लेच्छों को ब्राह्मण बना रहे हो, शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हो। बाहर भी जब गए तो वहां भी लोगों ने निंदा की, शत्रु बने उनके, लेकिन प्रभुपाद ने किसी के प्रति शत्रुता नहीं दर्शाई। जो व्यक्ति भक्तों के प्रति शत्रुता करता है उसके जीवन में कष्ट निश्चित आता है, लेकिन भक्त कामना नहीं करता। जैसे जब शिला प्रभुपाद जिहू की जमीन ले रहे थे, जिहू मंदिर की, तो उस व्यक्ति ने उस जमीन को कई लोगों को बेच दिया, प्रभुपाद को बेचा, फिर धोखा किया, दूसरे को बेचने जा रहा, तो प्रभुपाद ने कुछ किया नहीं, लेकिन स्वतः ही उसकी मृत्यु हो गई, उसको मरना पड़ा, क्योंकि एक भक्त के प्रति उसने अपराध किया था। तो इसीलिए भक्त का कोई शत्रु नहीं होता। तीसरा, वो सत्यनिष्ठ होता है। सत्यनिष्ठ मतलब सदैव परम सत्य के संपर्क में रहता है। इस जगत का सत्य नहीं, ये सत्य कौन से हैं? परम सत्य। तो वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेता, सत्यनिष्ठ, सत्यता पे बना रहता, ये उसके लिए आवश्यक है। तो ये भक्त का लक्षण है, सब पर संभाव रखता है। प्रभुपाद के जीवन में हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद ने सदैव सत्य का सहारा लिया, कभी कहीं झूठ नहीं बोला। जब ये संस्था बना रहे थे तो लोगों ने कहा, स्वामी जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बनाइए, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, कृष्ण ये सत्य है, तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसीलिए इस्कॉन बना। नहीं तो अगर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बना होता, इस्कॉन हो गया होता, अभी तक चला गया होता, लेकिन इस्कॉन था इसीलिए टिका हुआ। तो सत्यता, समभाव, प्रभुपाद ने सबके ऊपर समभाव रखा। कहां कहां देशों में जाकर उन्होंने प्रचार किया, किसी का सोचा नहीं उन्होंने। उन्होंने अपने शिष्यों को पाकिस्तान में भी भेजा, उस समय पर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने समभाव रखा, हरेक को कृष्ण भावनामृत का पालन करने का अवसर प्रदान किया प्रभुपाद ने। जर्मनी में, रशिया में, अमेरिका में, लंदन में, कहीं उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि अरे ये तो मांस खाने वाले लोग हैं, इनको नहीं कृष्ण भावनामृत मिलनी चाहिए, हरेक को प्रदान किया। ये समभाव है, उनमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता। प्रभुपाद में कौन सा अवगुण मिला हम लोगों को? और हमें ही नहीं, ये नहीं कि हम लोग उनके अनुयायी हैं इसलिए कोई अवगुण नहीं, आज तक किसी ने एक अवगुण नहीं निकाला प्रभुपाद में। बाहर भी लोगों, कौन सा अवगुण किसी ने? कोई अवगुण नहीं, जितने थे सारे गुण। वह उदार होता है, उदार मतलब इतना उदार कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें प्रदान कर देता है जो संभव नहीं है, जिसके लिए योग्य नहीं है व्यक्ति, उदारता उसे कहा जाता है। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि आपने ऐसा ऐसी वस्तु कृष्ण प्रेम को प्रदान किया है जो इन लोगों के लिए, ये योग्य नहीं है ये लोग, इसीलिए आप महावदन्याय हैं, बहुत उदार हैं। और श्रील प्रभुपाद ने उसी का पालन करते हुए, वही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हुए फिर उन्होंने उदारता दिखलाई और सारे जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, वही कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो आगे बहुत सारे गुण हैं, समय नहीं है एक एक गुण पर विस्तार से चर्चा करने का, लेकिन जैसे मृदु होना, सदैव स्वच्छ रखना, और श्री कृष्ण का शरणागत होना, और श्रील प्रभुपाद सदैव श्री कृष्ण के शरणागत थे। दूसरों को आदर देना, प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी आदर दिया करते थे, ये कहकर कि ये सारे शिष्य मेरे गुरु महाराज ने भेजे, अपने को कोई श्रेय नहीं लेना, ये भगवान के भक्त के लक्षण है। जहां श्रेय लेने की बात आती है वो पीछे आ जाते हैं, लेकिन जहां सेवा की बात आती है वो सबसे आगे रहते। प्रभुपाद ने कितना किया, 108 मंदिरों का निर्माण किया, उन्होंने इतने शिष्य बनाए, लेकिन कभी श्रेय नहीं लिया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे गुरु महाराज ने केवल 64 मठ बनाए थे, मैंने 108 कर दिए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा, ये सब वो कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी बात का श्रेय नहीं लिया, कि मैंने इतने हजार शिष्य बनाए, मैंने इतना प्रचार किया, दुनिया भर में कृष्ण को फैलाया, कोई श्रेय नहीं। ये भक्त के लक्षण। और खैर बहुत सारे लक्षण हैं इसमें, भौतिक कामना नहीं सताती, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, ये भक्त का लक्षण है। हम लोगों को एक तो कम से कम ये बात एक सीख लेनी चाहिए, बाकी बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये तो हम लोग कर सकते हैं जो संभव है। सबों का आदर करता है, प्रभुपाद के लिए देखिए सबका उन्होंने आदर किया। मृत्यु के समय श्रील प्रभुपाद सबसे क्षमा मांग रहे थे कि मैंने प्रचार के समय बहुत कुछ ऐसी बातों को कह दिया, बहुत कुछ ऐसे शब्दों को कह दिया प्रचार के लिए जो आवश्यक थे, लेकिन फिर भी मैं अब क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। तो देखिए उनको कोई अहंकार नहीं था उस समय कि देखो मैं कितना बड़ा नेता, कितना बड़ा गुरु होकर जा रहा हूँ इस जगत से। नहीं, उस समय भी वो सबसे क्षमा मांग रहे थे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे प्रचार के समय इतना करना पड़ा। ये प्रभुपाद जो सबको सम्मान देते हैं, और अपने सम्मान की उनको कभी कोई कामना नहीं होती। तो ऐसे ये गुणों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। प्रहलाद महाराज इस श्लोक को कहते, बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक है। तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि ये जो गुण आज हमने सुने अपने हृदय में थोड़े बहुत लाने का हम प्रयास करें, ताकि श्री कृष्ण को प्रिय हो सकें और श्री कृष्ण की भक्ति में अग्रसर हो सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल लक्ष्मी जी की प्रार्थनाओं को कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं लक्ष्मी देवी ने की हैं। सारा जगत लक्ष्मी के पीछे पागल है, और लक्ष्मी ने क्या कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल लक्ष्मी देवी की प्रार्थनाओं पर और आगे मत्स्य अवतार इत्यादि की प्रार्थनाओं पर प्रयास करेंगे। कल ही इस अध्याय को समाप्त करें और फिर आगे का जो अध्याय है इस ब्रह्मांड का वर्णन उसको प्रारंभ करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस। Yes, we have inbuilt nature, and सभी प्रश्न ऐसा है कि सभी लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है, और उस स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन होता है, और साथ ही साथ हमें भक्ति में ये गुणों को भी उत्पन्न करना है, तो कैसे करना चाहिए? स्वभाव अलग है और गुण अलग है, यही प्रश्न है आपके? हाँ, तो हमारे सबके स्वभाव होते हैं, और ये स्वभाव उत्पन्न हुए हैं अपने अपने कर्मों से। हम लोगों ने जिस स्वभाव को प्राप्त किया है ये कर्मों के आधार पर आया है। इसीलिए देखिए बच्चों में भी स्वभाव होता है, कोई बच्चा बहुत खेलता है, कोई खेलना नहीं चाहता, कोई कुछ, बच्चों में भी। तो ये सब स्वभाव हमें अर्जित किया है हमने। अर्जित मतलब ये अर्जित स्वभाव है। दरअसल दो स्वभाव होते हैं जीव का, एक स्वभाव, स्व यानी आत्मा का भाव, और दूसरा अर्जित स्वभाव। अर्जित स्वभाव मतलब वो जो हमने कई जन्मों के भौतिक जीवन के द्वारा अर्जन किया है, कमाया है कर्मों के द्वारा, तो उसको अर्जित स्वभाव कहते हैं। तो जो अर्जित स्वभाव है, हम जिस स्वभाव को जानते हैं वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है, वो अर्जित स्वभाव है। तो अर्जित स्वभाव के कारण हमारे बाधाएं आती हैं, भक्ति में बाधाएं आती हैं, ये सही है। लेकिन उस अर्जित स्वभाव को मूल स्वभाव में बदलने का मार्ग ही भक्ति है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण भक्ति में कष्ट पा रहा है या बाधाओं को सामना कर रहा है, तो उसको जीवन में एक नियम बनाना चाहिए कि वो अपने गुरु या अधिकारी के बातों पर चलेगा, जो वो कहें बस उसको स्वीकार करें, तो हमारे अर्जित स्वभाव को परास्त करने का एक मार्ग है गुरु की शिक्षाओं को या गुरु के आदेश को शब्दशः पालन करना। इससे बड़ी मदद मिलती है स्वभाव को परास्त करने में, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि जो ये कहेंगे बस करेंगे, तो उसमें धीरे धीरे स्वभाव बदलता है। दूसरी चीज़, भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उनको गंभीरता से करने का पालन कर प्रयास करना, इससे स्वभाव बदलता है। क्यों बदलता है स्वभाव? क्योंकि अर्जित स्वभाव है, मूल स्वभाव नहीं है, और भक्ति के द्वारा हम मूल स्वभाव की ओर जा रहे हैं। भक्ति क्या है? भक्ति वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी मूल स्थिति में जाने का प्रयास करता है। मुक्ति हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो जब मूल स्वभाव की ओर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर हम दृढ़ता से उस पथ को बने रहें, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक जहाज समुद्र को पार कर रहा है, हमें भी समुद्र को पार करने के लिए क्या करना है? केवल जहाज में बने रहना है। अगर किसी न किसी कारण से जहाज को छोड़ दिया तो जहाज तो पार कर जाएगा, हम डूब जाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह जहाज में बने रहे तो जहाज भी पार होगा, हम भी पार होंगे। भक्ति वो जहाज है जिससे इस भव सागर को पार करना है, बस बने रहना है उसमें, छोड़ना नहीं। और बने रहने के लिए क्या करना है? गुरु के आदेशों का पालन बड़ी कड़ाई से हमें करना चाहिए, जिससे हम अपने स्वभाव को बदल सकें। भक्ति की क्रियाओं को बड़ी गंभीरता से करना चाहिए, जिससे हम अपने स्वभाव को बदल सकें। भक्तों की सेवा दास दासानुदास के रूप में करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने अहंकारी स्वभाव को चूर कर सकें। क्योंकि जो व्यक्ति भक्तों की सेवा में लग जाता है उसके लिए स्वभाव को बदलना बड़ा सरल हो जाता है। जैसे नारद मुनि, उन्होंने भक्तों की सेवा की, साधारण सेवा, कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं की थी भक्तों की, साधारण सेवा की, उनको प्रसाद देना, उनके उनके प्लेट्स हटाना, उनको साफ सफाई करना, फिर उनका जो चिष्ट बचा था उसको ग्रहण करना, और इसी से उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। हम लोग देखते हैं नारद मुनि के जीवन में यही तो है। तो इसीलिए भक्तों की नम्र भाव से सेवा करना, और साथ ही साथ जैसे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हमने जो दो श्लोक इसके पहले पढ़े, श्रवण करना, बारंबार सुनना, समर्पित भाव से ध्यान पूर्वक जितना हम सुनेंगे धीरे 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 ये स्वभाव बदलेगा। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वभाव बहुत जल्दी बदल जाएगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं, हमें विश्वास रखना है कि एक दिन स्वभाव बदलेगा और हमें हमारे ऊपर कृपा होगी। और अंतिम चीज व्यक्ति को करनी चाहिए बड़ी तीव्रता से श्री कृष्ण से प्रार्थना। अगर ये चीज़ें हम लोग करते हैं तो निश्चित हमारा अर्जित स्वभाव मूल स्वभाव में बदल जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? बहुत अच्छा प्रश्न है। अहंकार को अगर मिटा दिया तो आत्मसम्मान बना रहेगा। हर जीव के दो अहंकार होते हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक सच्चा अहंकार। जिस अहंकार को मिटाने की बात है वो मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार। इस जगत में जब हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है हमें अहंकार आ जाता है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, ये मिथ्या अहंकार है। सच्चा अहंकार क्या है? कि हम कृष्ण के सेवक हैं। सच्चा आत्मसम्मान जीव के लिए क्या है? सम्मान वो नहीं है जो इस जगत के थोड़े बहुत लोग आपको लाकर दे देते हैं, फिर अगला जन्म लेंगे उसमें कहाँ सम्मान मिलेगा। जैसे प्रभुपाद बताया करते थे कि भारत के एक प्रधानमंत्री, उनका जन्म लाल किले में चूहे के रूप में हुआ होगा, क्योंकि बड़े आसक्त थे लाल किले से, तो उस रूप में कौन सा सम्मान मिला। लेकिन असली सम्मान आत्म मतलब आत्मा, और आत्मा का सम्मान एक ही है कि वो अपने संवैधानिक कार्य में लगे। आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जब हम उस सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं तो न केवल इस जगत के लोग, शास्त्रों में वर्णन है कि देवता तक, ब्रह्मा शिव इत्यादि उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, क्योंकि वो सच्चा आत्म सम्मान है। इसलिए इस और इस जगत में भी अगर हम सम्मान चाहते हैं या जो भी चीज़ें, वैसे इन गुणों को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें से एक गुण था, वो अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको स्वतः सम्मान मिलता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने सारे सम्मान को त्याग दिया, सन्यासी थे, उन्होंने कोई सम्मान की कामना नहीं की। उन्होंने एक स्त्री से जाकर, एक सन्यासी को नियम ये है कि ज़्यादा स्त्रियों से बात नहीं करना चाहिए, उन्होंने एक स्त्री के दरवाजे पर जाकर याचना की बारंबार, कई घंटों तक बैठकर कि मुझे एक टिकट दीजिए अमेरिका जाने का। उन्होंने अपने कोई सम्मान की चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, सन्यासी होकर सैफरन में और उसके दरवाजों पर सीढ़ियों पर बैठा है, बार बार कह रहा है मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, कोई सम्मान की चिंता नहीं की। फिर गए भी किस में, कोई पैसेंजर शिप नहीं, कार्गो शिप, तब उनका सम्मान को ठेस नहीं पहुंची कि अरे मैं प्रचार करने जा रहा हूं, मुझे अच्छा एसी रूम मिलना चाहिए था। वो कौन से कमरे में, कौन से शिप में गए? जलदूत, एक एक मालवाहक जहाज, उसमें गए। उसके बाद जब वहां पहुंचे तो वहां क्या, कौन से सम्मान की उनको आशा थी? लोगों ने अपने घर में रखने से मना कर दिया। जो घर में रखे भी एक एक व्यक्ति ने, तो उसने ऐसे जगह रखते थे कि प्रभुपाद का खाना प्रसाद जो भगवान को अर्पण करने वाले हैं उसके साथ में कुत्ते को खिलाने का मांस रखा हुआ है। प्रभुपाद ने कोई सम्मान की आशा नहीं की, उनको घर से निकाल दिया कि नहीं आप जाइए, आप बोल नहीं सकते हैं। प्रभुपाद ने कोई सम्मान की आशा नहीं की। नशेड़ी उन्हें, जो नशे में रहते थे, उन्होंने एक दिन रात को उठाकर प्रभुपाद को 12 बजे बाहर कर दिया। प्रभुपाद ने कोई सम्मान की आशा नहीं की, लेकिन भगवान ने कितना सम्मान उन्हें दिया। उन्होंने आशा नहीं की, लेकिन भगवान ने सम्मान उन्हें इसी जगत में, इसी जीवन में इतना सम्मान उन्हें दिया। तो उन्हें फिर सारी दुनिया में सम्मान मिला, जहां गए, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, रशिया, जहां वो गए वहां सम्मान मिला उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने सम्मान की कामना नहीं की, इस भौतिक सम्मान की। उन्होंने अपने आत्म कार्य को, स्वार्थ को ध्यान दिया। तो इसी तरह जब हम उस कार्य को ध्यान देते हैं तो सच्चा सम्मान आता है, जो प्रभुपाद को आया, जो देवता तक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो इसीलिए हमें अहंकार को त्याग कर सच्चे आत्म सम्मान के लिए भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? वैसे साधारणतः ये माना जाता है कि अहंकार नहीं होगा तो लोग आपको पायदान की तरह इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको एकदम नीचे कर देंगे, फिर क्या होगा? आवश्यक नहीं है। अहंकार नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति एकदम नीचे गिर जाए। अहंकार नहीं होने का अर्थ ये है कि व्यक्ति ये समझे कि जो भी चीज़ मुझे मिल रही है वो भगवान की कृपा है। इस अवस्था में वो जो कुछ भी करे, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ठीक है, लेकिन उसको अपने पद से, अपनी शक्ति से आसक्ति ना हो, ये अहंकार त्यागना है। कि बड़ा नम्र हो उस अवस्था में। अहंकार त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि आप सबके पांव के नीचे घूमने लगे। अहंकार त्यागने का अर्थ है कि किसी चीज को आसक्त ना हो, हर चीज को भगवान की कृपा माने। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल लक्ष्मी जी की प्रार्थनाओं पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।